ओम शांति, ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। बाबा की अभी मुरली सभी ने सुनी, भले वीडियो के द्वारा सुनी, लेकिन समय अनुसार ये मुरली ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी थी। स्नेह में सदा खो जाना, क्योंकि अंतिम समय चारों तरफ हलचल होगी, परिस्थितियां विपरीत होगी। ऐसे समय पर अगर हम स्नेह में खो गए होंगे तो हमारे आसपास वालों को भी हमारे से प्रेरणा मिलेगी, उनको भी हमारे से बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। हम खुद तो सेफ रहेंगे लेकिन दूसरों को भी बल दे सकेंगे, इसलिए ये स्थिति बड़ी जरूरी है। वर्तमान समय दिन प्रतिदिन प्राकृतिक हलचल, माया के द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे आपस में भी, स्वभाव संस्कारों के टकराव, और ऐसे समय पर जितना हम स्नेह में खो जाएंगे ये बातें हमें कुछ भी नहीं लगेगी। जब हम स्नेह से बाहर आ जाते हैं तब इन बातों का चिंतन चलता है, ये क्यों हुआ, ये ऐसा कैसा हो रहा है, लगता है कि जीवन बहुत कठिन है, चलना इसके साथ एडजस्ट करना बड़ा कठिन है, ये परिस्थितियां बड़ी कठिन है। ये कब लगता है? जब हम परमात्मा स्नेह से बाहर आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि विशेष परमात्मा की स्नेह की अनुभूति में खो जाओ, असंभव बातें भी संभव लगेगी, मेहनत से मुक्त बन जाएंगे। इसलिए ये स्थिति हमारी सदा बनी रहे उसका पुरुषार्थ है अशरीरी स्थिति, क्योंकि जितना हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं उतना बाबा के स्नेह में हम खो जाते हैं। और खास तो ये जनवरी महीना शुरू से लेकर के इस महीने में नया साल भी चालू हो जाता है, सभी का उमंग रहता है इस साल में कुछ करना है। और वैसे 18 जनवरी भी आती है, तो इसलिए सब पुरुषार्थ में लग जाते हैं, किसी की कमियां नहीं देखते, व्यर्थ नहीं सोचते, सोचते हैं वरदानी महीना है, थोड़ा पुरुषार्थ करना है। तो जब हम पुरुषार्थ पर ध्यान देते हैं तब जाकर के हमारी स्थिति अशरीरी बन जाती है, और जब हम अशरीरी बन जाते हैं तो बाबा के याद में खो जाते हैं। जिन लोगों को हम इससे पहले भी देखते थे, उनके साथ में रहते थे, लेकिन जब हमारी अशरीरी स्थिति रहती है उनके अंदर भी विशेषता दिखाई पड़ते हैं, वो महान आत्मा दिखाई पड़ते हैं, जीवन में कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ती, लगता है सचमुच जीवन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों अनुभव हुआ? क्योंकि हमने स्थिति को अशरीरी बनाया। तो अगर हम अशरीरी स्थिति में रहेंगे तो ये स्थिति ऑटोमेटिकली हमारी आएगी, स्नेह में हम सदा खो जाएंगे। और वैसे ही सारे ज्ञान का सार, हमारी इस पढ़ाई का सार ही है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, क्योंकि इसी स्थिति के द्वारा ही हमारे अंदर दैवी संस्कार, दैवी संस्कृति आएगी, हमारे जीवन में रॉयल्टी आएगी, हमें किसी की भी कमियां दिखाई नहीं पड़ेगी। तो ये संस्कार अभी हमें संगम युग में डालना है। हमें परमात्मा का ये खेल बहुत अच्छा अनुभव होगा, इतना ही नहीं हम अपने इंद्रियों का भी राजा बन सकेंगे, इसी स्थिति के दौरान। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये स्थिति बनाओ, बाकी जो बीच का ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, ये सब जितना भी ज्ञान है, इस ज्ञान को जो प्रैक्टिकल में लाता है उसकी ये स्थिति बनती है। वास्तव में परमधाम से शिव बाबा हमें अशरीरी बनाने के लिए आया है। सत्युग भी कब आएगा? जब हम अशरीरी बनेंगे। अशरीरी बनने से ही हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इतना ही नहीं, हम सारी जो मेहनत लगते हैं आज कईयों को संस्कार बदलने की मेहनत लग रहे हैं, कईयों को याद में रहने की मेहनत लग रहे हैं, कईयों को सेवाओं की सफलता के लिए मेहनत लग रहे हैं। सारी मेहनत का कारण है देह का भान। आज कईयों को विघन मुक्त बनने की मेहनत लग रहे हैं, एक बातों से मुक्त हो जाते तो दूसरा आ जाता है, वो खत्म करो तो तीसरा आ जाता है। कारण क्या है? देह का भान। अगर हम अशरीरी स्थिति में रहेंगे वही विघन हमें आगे बढ़ने का साधन बन जाएगा। आज तक जो परिस्थिति आई है वो भी हमें लगा था कि सचमुच वो परिस्थितियां भी कल्याणकारी थी। उन परिस्थिति को निर्माण करने वालों के प्रति भी हमारी दुर्भावनाएं, अशुभ भावना नहीं चलेगी। लगेगा इन्होंने मेरे साथ जो किया बहुत अच्छा किया। वो सदा हल्के रहेंगे, लाइट रहेंगे। कौन? जो अशरीरी स्थिति में रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अशरीरी स्थिति के द्वारा हम सदा लगन में मगन रह सकेंगे, सदा बाबा के प्यार में खो जाएंगे। जब हम देह के भान में आ जाते हैं तब हम बाबा के प्यार से दूर हो जाते हैं, हद में आ जाते हैं। इसलिए सदा अपने उस मूल स्वरूप में, अशरीरी स्थिति के स्वरूप में टिके रहना है, क्योंकि इस अशरीरी स्थिति में जब हम टिके रहते हैं तो जैसे हमारे चारों ओर एक प्रकार का सुरक्षा कवच, पावरफुल वाइब्रेशंस रहता है, और ऐसी आत्मा सदा समर्थ सोचती है, हर परिस्थिति को भी समर्थ के रूप में देखती है, उसके मन भी चुप रहता है, हर इंद्रियां चुप रहती है। इसलिए इस अवस्था में रहना है। जितना इस अवस्था में हम टिके रहते हैं हम बहुत अच्छा पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं, कर्म योगी की स्थिति को बना सकते हैं। कर्म योगी लगन में मगन, और जो कर्म योगी है तो जैसे कि बाबा के स्नेह में खोया है। भले हाथ से कर्म हो रहे हैं लेकिन अशरीरी स्थिति के कारण लगन में मगन है। अशरीरी स्थिति में रहने से न मानसिक थकावट होती है न शरीर की थकावट होती है, क्योंकि इस अशरीरी स्थिति में मन हमारा चुप रहता है, मन का सोचना बंद हो जाता है। और जिसका मन चुप रहता है वो कितना भी शरीर से सेवा करेगा उसको थकान नहीं होगी, हल्कापन का अनुभव होगा, कोई भी बात की मेहनत नहीं लगती है। मेहनत तब लगती है जब मन सोचना शुरू करता है, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। इसीलिए मेहनत से अगर मुक्त बनना है परमात्मा के स्नेह में सदा खो जाना है, हमें इस स्थिति में सदा रहने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में हमारा पुरुषार्थ है और इस पुरुषार्थ का रिजल्ट है हम सदा स्नेह में खो जाएंगे, क्योंकि इस स्थिति में रहने से जैसे कि हम बाबा के साथ कंबाइंड है, बाबा हमारे से दूर अनुभव नहीं होता, परमधाम हमारे से दूर अनुभव नहीं होता। इस अवस्था में रहने से हम जो भी कुछ देखते हैं, देखते हुए हमारी न देखने की अवस्था रहती है, उसके संकल्प विकल्प नहीं चलते हैं, आंखें खुली है, कान खुला है, सब हम देख रहे हैं, लेकिन तो भी उपराम अवस्था, वैरागी अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में रहने से आत्मा को एक अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिसको ये सुख मिल जाता है वो देह की बातें, देह का हद की बातें, इसे मन उपराम हो जाता है, और ऐसी आत्मा सारा समय स्नेह में खो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति में खो जाती है, और इसे सहज ही हमारे जीवन में सहन शक्ति, धैर्यता, नम्रता, ये गुण ऑटोमेटिकली दिखाई पड़ते हैं। जब हम स्नेह में खो जाएंगे तो ये गुण ऑटोमेटिकली व्यवहार में दिखाई पड़ेंगे, जैसे पानी मछली के बिना नहीं रहती, वैसे ही हम जितना परमात्मा के प्यार में खो जाते हैं, परमात्मा से अलग नहीं होते हैं, कंबाइंड स्वरूप रहते हैं, उतना हमारी स्नेहमय स्थिति बनी रहती है, और इससे ही हमारे जीवन में जो विघ्न आते हैं, समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम भी हमें प्रॉब्लम नहीं अनुभव होंगे। अगर प्रॉब्लम आएंगे भी, ऐसी स्नेह में खोने वाली आत्मा उस प्रॉब्लम से भी पाठ सीख करके और आगे बढ़ती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस स्थिति में सदा खोए रहो, उसके लिए हमारी स्थिति अशरीरी। इसलिए बाबा की जितनी भी मुरलियां चलती है, चाहे साकार में चाहे अव्यक्त, बाबा सदा कहते कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, अशरीरी स्थिति में रहो, क्योंकि इस स्थिति में रहने से परमात्मा भी याद आ रहता है, ड्रामा भी याद रहता है, अब घर जाना ये भी याद रहता है, ये सब विनाशी है वो भी याद रहता है, कितना भी देह सुंदर है देह के तरफ बुद्धि नहीं अटकेगी। इस स्थिति में रहने से बुद्धि मन सभी इंद्रियां कंट्रोल में रहती है, इसलिए हमें इस अशरीरी स्थिति में सदा स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। और इसी से हमारे समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण, इतना ही नहीं, अगर हमारे संकल्प भी चलते, संकल्प भी समर्थ होंगे, व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे, ऐसी आत्मा सदा खुशनुमा रहती है। जो परमात्मा के स्नेह में खो जाती है वो खुशनुमा वैरागी जो योगी के लक्षण है, वो लक्षण इस अवस्था से दिखाई पड़ते हैं। बाहर कितना भी हलचल है, लेकिन उस हलचल से भी पार, इस अवस्था में रहने से आत्मा सोमानों के सिट पर रहती है। बाकी उसको बाहर कितना भी अपमान हो जाए, कोई मान दे ना दे, उसमें उसको हलचल नहीं आती। तो ऐसी अवस्था जितनी हमारी रहती है, उतना हम सदा परमात्मा के स्नेह में खो जाते हैं, और इस अवस्था में खोने से हमारा टाइम सफल हो जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। वो रात को सोए हैं तो भी टाइम सफल हो रहा है, रास्ते में चल रहे हैं तो भी उसका टाइम सफल हो रहा है, हर पल उसका समय सफल होता है, क्योंकि परमात्मा के स्नेह में खोने वाली आत्मा व्यर्थों से मुक्त है। और ऐसे अवस्था से हम वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं। इसलिए इस अवस्था में सदा रहना है। इसलिए हमारी अशरीरी स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने जब से बीके बने ज्ञान में चले, जिन्होंने इस लेसन आत्मा के लेसन के तरफ जितना ध्यान दिया, उतना स्नेह में खो जाना उसके लिए इजी है, सरल है। इसलिए बाबा ने भी, ब्रह्मा बाबा ने भी आत्मा का लेसन पक्का किया। अगर मुझे बाप समान बनना है, जैसे बाबा निराकारी अवस्था में रहते थे, जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता थे, कर्मातीत बने, इस पुरुषार्थ से हम बन सकते हैं। तो इस वर्ष में हमें सदा इस स्नेह में स्थिति में खो जाने का पुरुषार्थ करना है। इसे हम सहज ही माया के साथ जो हमारा युद्ध चलता है, ये युद्ध हम बंद कर सकेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि बाहर युद्ध तब चालू होगा जब ब्राह्मणों का अंदर का युद्ध बंद हो जाएगा। और माया युद्ध कब करती है? जब हम देह भान में आते हैं। इसलिए बाबा ने एक मुरली में भी कहा था, माया तो कहते हैं मैं तो युद्ध करते करते थक गई है, लेकिन फिर भी बच्चे देह भान में आते हैं, इसलिए मुझे भी आना पड़ता है। जितना हम देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, उतना मायाजीत बनने का जैसे हमारे चारों ओर कवच रहेगा, माया का कोई भी चाल हमें उस कवच को से बाहर नहीं निकाल पाएगी।
प्रेम से
चलो उस स्थिति का अनुभव।
मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का
بات چل رہی تھی کیسے ہم صدا بابا کے سنیہ میں صدا کھوئے رہے. بابا کے سنیہ میں کھونے کے لیے صدا اشریری استھتی میں رہنا ہے. اشریری استھتی سے ہمیں ایشوریہ نشہ چڑھ جاتی ہے. اشریری استھتی میں رہنے سے ہی ہمارے جتنے بھی پرانے سنسکار ہیں, کیونکہ ہر ایک کو کوئی کوئی سنسکار تنگ کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم دیہ کے بہان میں آتے ہیں تو پرانے سنسکار جاگرت ہو جاتے ہیں. جب سنسکار جاگرت ہو جاتے ہیں تو ہماری سنیہ کی استھتی کے بجائے کمپلین کرنے والی. بابا نے کہا نا چار پرکار کی مالا, اس میں جو دیہ بہان میں آتا ہے اس کو کمپلین کرنے کرے گا, یہ ایسا کیسا ہو گیا, یہ ہو گیا. بابا نے کہا کہ سب سے اچھا ہے شریشٹھ پرشارتھی, وہ کون ہے؟ جو سدا اشریری استھتی میں رہتے ہیں, سدا اپنے سوروپ میں استھت رہتے ہیں. اور ایسی آتما ہی جو اشریری اوستھا میں رہتی ہے وہ بے فکر بادشاہ, کوئی بھی پرکار کی فکر نہیں, نہ بھوشیہ کی نہ بیتی باری کی, وہ ورتمان میں جیتا ہے, ورتمان کا آنند لیتا ہے. بے فکر بادشاہ وہ سدا اپنے سومان میں اپنے برکوٹی آسن پر استھت رہتا ہے. وہ نشچنت رہتا ہے, نشچے بدھی ہوتا ہے, اس کو کوئی بھی باتیں ہلچل میں نہیں لائے گی. تو ایسی اوستھا بنانے کے لیے اشریری استھتی چاہیے, اور اس استھتی کے دوارا ہی ہم پربھو کو پرتیکش کر سکیں گے. بابا نے کہا کہ آگے چل کر کے آپ کا میوزیم دیکھنے کے لیے, چتر دیکھنے کے لیے, پردرشنی کے لیے لوگ نہیں آئیں گے, کیونکہ آج کل سبھی کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلمس ہے, تناؤ ہے, ٹینشن ہے. تو اسی سمے اور ہمارا چہرہ, براہمنوں کا چہرہ سدا اگر خوش ہوگا, کیونکہ ورتمان سمے سب کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی وگھن سمسیا سے, اور ایسے سمے پر اگر کوئی آس پاس پڑوس میں کوئی خوش نظر آتا ہے اس کو لگے گا اس کو کچھ ملا ہوا ہے ضرور, کیونکہ ورتمان سمے چاہے امیر ہیں اس کا بھی چہرہ لٹکا ہوا ہے, کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. جو غریب ہے اس کو بھی کمانے کا کارن کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے, لیکن جو بے فکر بادشاہ ہیں, جو اشریری استھتی میں رہتے ہیں, وہ سدا خوش رہیں گے. اور ایسا خوشی کا چہرہ دے کر کے ان کو لگے گا ان کو کچھ ضرور ملا ہوا ہے, وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے, سینٹر پر آئیں گے, تب بابا کی پرتیکشتا ہوں گی. اس لیے ایسی ہماری اوستھا بنی رہے, اس لیے اپنے سدا اشریری اوستھا میں رہنا ہے. اشریری والا دوسروں کو نہیں دیکھتا, یہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنے لکش کو دیکھتا ہے, اپنے آپ کو دیکھتا ہے, خود کو دیکھتا ہے. وہ پر چنتن, پر درشن, ان باتوں سے پرے رہتا ہے, ایک بابا کی یاد میں کھو جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا آگ لگی بستی میں ہم اپنے مستی میں. لیکن کون رہ سکتا ہے؟ جو سدا اشریری اوستھا میں رہتا ہے. اور ایسی آتما انتیم سمے جب چاروں طرف وناش کا کاریہ چلے گا, ایسے سمے پر انیک آتماؤں کو, رونے والوں کو سہارا دیں گی, رونے والوں کے آنسو پہنچنے کے نمت بنے گی. اس لیے بابا کہتے بچے اس اوستھا کو بناؤ, جماؤ, اسے سدا ہی بابا کے یاد میں کھو جائیں گے, اس کو سدا ہی گھر سامنے دکھائی پڑے گا, پرم دھام سامنے دکھائی پڑے گا, اپنی راجدھانی سامنے دکھائی پڑے گی. اتنا ہی نہیں, ورتمان سمے بھی بھلے کلیوگ میں رہتے ہیں لیکن یہ کلیوگ بھی بہت اچھا انبھو ہوگا, یہ ڈرامہ بہت اچھا انبھو ہوگا, جو دیہ کے باہن میں آتا ہے اس کو لگتا ہے یہ ڈرامہ کیسے بنا ہوا ہے, کتنی سمسیا ہے, کتنے پرابلم ہے, کتنی باتیں ہیں, کس کو ہوگا جو دیہ کے باہن میں ہے. اس لیے ہمیں سدا اس استھتی میں کھوئے رہنا ہے. تو سدا یہ استھتی میں ہم بنے رہے, نیچرل ہماری اوستھا بنی رہے, اس کے لیے کیا کریں؟ سدا میری اشریری اوستھا بنی رہے, میں اس اشریری استھتی سے باہر نہ آؤ, دیہ کے بہان میں نہ آؤ, اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ٹوٹل جو بابا کا جو گیان ہے, چاہے ڈراما کا گیان, کرموں کا گیان, جو ہوا اچھا یہ گیان, اب گھر جانا ہے ستی, یہ سب اس سوروپ میں ٹکنے کے لیے. اگر ہمیں اس سوروپ میں ٹکے رہنا ہے, جیون میں آنے والی نگیٹو باتوں کو پوزیٹو بنا دو, کیونکہ جتنا ہم ویرتوں سے مکت رہتے ہیں, سدا سمرت سوچتے ہیں, اتنا ہماری یہ اوستھا بنی رہتی ہے نیچرل. اگر ہم نگیٹو میں جائیں گے اتنا دلدل میں پھنستے ہیں. اس لیے بابا کہتے بچے بیتی کو بندی لگاؤ, نگیٹو نہیں سوچو, ویرتوں سے مکت بنو. یہ بابا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جتنا بیتی ہوئی باتوں کو بندی لگائیں گے اتنا ہم بندی سوروپ میں ٹک سکیں گے. جتنا سنکلپ زیادہ چلتے, سنکلپ کی من میں سپیڈ بڑھ جاتی ہے, اتنا دیہ کا بھان آئے گا. وہ سنیہ میں کھو جانے کے بجائے پرشن میں الجھی جاتی ہے, یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, ایسے کیسے ہوا, دیہ بھان آتا ہے. اس لیے ویرتوں سے مکت سدا سمرت. جیون میں اگر باتیں آتی بھی ہیں, اس نگیٹو سے کیا بنا دو, پوزیٹو لو. لیکن کون لے گا؟ جس کے تھنکنگ پوزیٹو ہے. جس کا تھنکنگ نگیٹو ہے, نگیٹو کو نگیٹو روپ میں لیتا ہے, اور روئی کو پا کیا بناتا ہے, پہاڑ بناتا ہے, اور اس کو لگتا ہے یہ مشکل ہے پار کرنا, پھر دوسروں کو بھی جا کر سنائے گا یہ میرے ساتھ ایسا ہوا, یہ ہوا, ان کا بھی ٹائم ویسٹ, خود کا ٹائم بھی ویسٹ. ایسی آتما کھو جانے کے بجائے اور ہی سمسیا میں گھر جاتی ہے. تو اب یہ سمے نہیں ہے ویرتوں کا وستار کرنے کا, کسی کو سنانے کا. اس لیے من کو چپ رکھ دو. وہ کون رکھ سکتا ہے؟ جس کے پاس گیان کے اتھا پوائنٹ ہیں, وہی ویرتوں کے وستار کو بندی سوروپ میں ٹکا سکتا ہے, یا وستار کو سار میں لا سکتا ہے. دوسری بات ہے, اگر ہمیں اس اوستھا کا انبھو کرنا ہے, سمے نکال کر کے ہمیں تپسیا کے طرف تھوڑا دھیان دینا ہے, سادھنا کرنی ہے. کیونکہ جتنا ہم بابا کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں, اتنی ہماری آتما کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے. جب ہم یوگ میں چارج ہو جاتے ہیں تو سہج ہماری سارا دن وہ اشریری استھتی بنی رہتی ہے, اور جب اشریری استھتی سویرے سویرے بنی ہے تو سارا دن ہم پرماتما کے سنیہ میں کھو جائیں گے, یہاں کی ویرت باتیں دکھائی نہیں پڑے گی. اس لیے ہمیں سادھنا کرنی ہے, تپسیا کرنی ہے, وہ بھی یتھارت, کیول ایسا نہیں کہ بیٹھ گئے, بیٹھ کر کے دھیان ایک طرف ہے, من ایک طرف ہے. یتھارت یوگ, جوالا سوروپ جس کو بابا کہتے ہیں, جوالا سوروپ یوگ کرو. جوالا سوروپ یوگ والا ہی اشریری استھتی میں رہتا ہے, اور وہی سارا دن بابا کے سنیہ میں کھو جاتا ہے, لگن میں مگن ہو جاتا ہے, پراپتیوں میں کھو جاتا ہے. تیسری بات ہے, اگر ہمیں سدا ہی اوستھا کو بنانا ہے, اشریری اوستھا بنانا ہے, تو جتنا ہم نرانکاری ہو کر کے رہتے ہیں اتنا یہ اشریری کی اوستھا ہماری بنی رہتی ہے. کبھی کبھی ہمیں دیہ کا بھان آتا ہے, کچھ ہم جو سیوا کرتے ہیں, کچھ مان سیان مل جاتا ہے. اگر ان باتوں میں ہم رہیں گے تو نراکاری اوستھا اشریری اوستھا نہیں رہے گی. اس لیے بابا نے بھی انتیم سمے منتر دے کے گئے تھے, بچے نراکاری بنو, نرویکاری بنو, نرہنکاری بنو. اور اس سیزن کے بھی مرلی میں, پہلی مرلی میں بابا نے کہا کہ بچے بہت محنت کرتے ہیں لیکن بچوں کے کھاتے جب دیکھا کھاتوں میں جمع کم ہے. کیوں؟ مئی پن. اس لیے بابا نے ہوم ورک دیا تھا خاص پہلے مرلی میں. بابا نے کہا کہ اس مئی پن کے پوچھ کو کیا لگا دو, آگ لگا دو, اور وہ آگ لگے گی جوالا سوروپ سے. نہیں تو مئی پن ہونے سے میرے کو پوچھا نہیں, میں نے اتنا سارا کیا, وہ آپس میں ٹکراتا رہے گا, دوسرے کے اوگن دیکھتا رہے گا, سنگٹن سے دور ہوتا رہے گا, پھر وہ اشریری یا کھونے کی سنیہ کی استھتی سے دور رہے گا. اس لیے ابھیمان سے دور, مئی پن سے دور, جتنا میں آتما ہوں اس سوروپ میں رہیں گے, یہ میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں تنگ نہیں کرے گی. اس لیے نراکاری استھتی اشریری استھتی بنی رہے, اس لیے مئی پن سے دور. مئی پن والوں کو اپمان فیلنگ ہوتی ہے, اور جس نے اپمانت کیا اس کو, اس کے پرتی وہ نگیٹو سوچتا ہے, اس کو دیکھتے وہ سنیہمے شتی کے بجائے اس کے اوگن دکھائی پڑتے ہیں, اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. یہ کیوں پر چنتن پر درشن میں چلا جاتا ہے. اس لیے نرہنکاری اتنا اشریری استھتی. چوتھی بات ہے, اگر ہمیں سدا اس اوستھا کا انبھو کرنا ہے, سدا پراپتیوں کو یاد رکھنا ہے. جتنا پراپتیوں کو یاد کرتے ہیں اتنی ہماری اشریری استھتی بنی رہتی ہے. بابا نے جو ہمیں پراپتیاں کرائی, ہم کیا تھے اور کیا سے کیا بنایا, اور بھوشیہ میں بھی بابا ہمیں کیا سے کیا بنا رہا ہے. جیسے کوئی آج کل کسی بچوں کو آئی ٹی میں ایڈمیشن ملتا ہے, وہ بچے کتنا نشے میں رہتا ہے. آج کل تو آئی ٹی میں کیول ایڈمیشن بھی ملا تو بھی لڈو پیڑا بانٹنا شروع کرتے ہیں, بھلے نوکری لگے یا نہ لگے, کیول ایڈمیشن ملنے سے. لیکن ہم کو کہاں ایڈمیشن ملا ہے, کہاں ملا ہے؟ پرنس پرنسس کے کالج میں. یہ سادھارن ستان نہیں ہے لیکن پرنس پرنسس کا کالج ہے, اور یہاں آنے والا ایڈمیشن لینے والا ستیگ میں جائے گا گارنٹیڈ, بھلے وہ سنسکار نہیں بدلے گا, کچھ بھی نہیں کرے گا تو بھی جائے گا. اتنی نشا چاہیے. اس لیے کرشنا ارجن کو کہتا ہے, ارجن تم اس یدھ سے پیچھے نہیں ہٹ, یہ یدھ کرتے کرتے تم ہار جاؤ گے تو بھی سورگ میں جاؤ گے, اگر جیت جاؤ گے تو بھی اونچا پد ملے گا. اس لیے ہم نے ایڈمیشن ملا, ہم نے کیول ایڈمیشن لیا ہے تو بھی ہم ستیگ میں ضرور جائیں گے, سورگ میں ضرور جائیں گے. اس لیے, اور ویسے کالج کس کا ہے؟ بابا کا کالج ہے, جس کا باپ بھی ٹیچر بھی ہے, پرنسپل بھی ہے, پیپر لینے والا بھی ہے, چیکنگ کرنے والا بھی ہے, اس کو کیا چنتا کرنا ہے؟ باپ ہی ہمارا, نہیں تو ان کو ہی لوگ کہیں گے تمہارا بچہ تو فیل ہو گیا, کیا بات ہے. تو اس لیے بابا پاس کر دے گا سب کو, اس لیے ٹینشن نہیں ہے. پر صرف اچھے مارک لینا ہے, پد اونچا لینا ہے. اس لیے ہمیں سدا اس نشے میں رہنا ہے. اور یہاں ایڈمیشن لینے والوں کا نام یگو یگو تک رہے گا. کیول یہاں ایڈمیشن لیا تو بھی ابھی بھی ان کے مندر بنے ہیں, جو مندر دیکھتے ہیں 5000 سال پہلے جنہوں نے برہما کماری ودیالیہ میں ایڈمیشن لیا تھا, پاس ہو گئے تھے, ابھی بھی ان کے مندر ہیں. جب تک چاند سورج رہے گا تب تک یہاں ایڈمیشن لینے والوں کا यहां सहयोगी बनने वालों का नाम रोशन रहेगा, तो कितनी बड़ी नशे है। इसीलिए बाबा कहते हैं इसी नशे में रहेंगे, प्राप्तियों में रहेंगे, तब बाबा के स्नेह में खो जाएंगे। जब हम प्राप्तियों को भूल जाते हैं तब देह भान में आ जाते हैं, देह की बातें, किसी ने कुछ बोला, ये सब बातें हमें परेशान करती हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं प्राप्तियों को याद करो, बाबा के उपकारों को याद करो। बाबा ने हमें मां बन करके क्या किया, कितनी प्राप्तियां कराई, कितनी पालना कर रहे हैं। जैसा कोई अगर व्यक्ति कोई गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, उसके तरफ देख भी नहीं रहे, और कोई व्यक्ति गया उस गटर से उसको निकाला, गले लगाया, आंसू पोछे, उसको घर में लाया, उसने ये नहीं सोचा अगर मैं उसको गटर में निकालने के लिए जाऊंगा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मुझे बीमारी लग जाएगी, नहीं सोचा। उसने उसको लाया और ला करके निलाया, धुलाया, रोज मालिश पालिश कर रहे, रोज खिला रहे। वो कभी गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा? तो हम भी कहां गिरे थे, विकारों के गटर में गिरे थे, 63 जन्मों से गिरे थे, किसी ने भी नहीं उठाया, लेकिन परम धाम से बाबा आया। कहां आपका घर था और कहां इस तीनों लोगों में से बाबा आपके पास आकर के आपके लिए कितना खर्चा किया है, बाबा ने आपके पास तक ज्ञान पहुंचाने के लिए बाबा ने कितना खर्चा किया, उसके लिए पति दुनिया में आया, कितनी सारे बहनों को सरेंडर किया, दादियों को सरेंडर किया, कितना बड़ा मेला लगाया था केवल आपके प्यार के खातिर, आपको ढूंढने के लिए। तो इतना बाबा ने हमें प्राप्ति कराई, और सत्युग में कितना हमें क्या क्या देगा वो, हम तो केवल एक घंटा पढ़ाई पढ़ते हैं लेकिन हमें क्या देता है वो, कितनी प्राप्तियां होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस प्राप्तियों को, बाबा के उपकारों को जितना याद करेंगे उतना हमारी लगन में मगन स्थिति बन जाएगी, और उसी से अशरीरी स्थिति बन जाएगी, और अशरीरी स्थिति से हम सदा सारा दिन बाबा के याद में खोए रहेंगे। जो बाबा के प्रभाव में रहता है, जिसके ऊपर किसी और व्यक्ति का प्रभाव ना हो, कोई संस्कारों का प्रभाव ना हो, कोई वस्तु का प्रभाव ना हो, वही बाबा के स्नेह में खो जाता है। अगर कोई बातों का प्रभाव है, कोई व्यक्ति का प्रभाव है, वो उस स्नेह की स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाता। इसीलिए अब मुझे किसी के भी प्रभाव में नहीं आना, एक बाबा के प्रभाव में सदा रहना है, और इसी स्नेह में स्थिति से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म खत्म हो जाते हैं। इसी स्थिति से हमें अति इंद्रिय सुख, प्रभु मिलन का सुख ये मिल जाता है, और इसे हमारी आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है, और उस आत्मा को कुछ देखने का, कुछ प्राप्त करने का, कुछ सुनने का कोई इच्छा नहीं रहती। अगर अभी भी मुझे कुछ इच्छा रहती है, मेरा मन भटकता है, बुद्धि भटकती है, इसका मतलब मैंने वो अशरीरी का अनुभव नहीं किया, मैंने वो स्नेहमय स्थिति का अनुभव नहीं किया है, इसीलिए मन भटकता है, बुद्धि भटकती है, कुछ देखने का सुनने का कुछ मन करता है। इसीलिए कहते हैं ना, परवाती पार ब्रह्म में रहने वाली की, अब वो मुझे मिला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये स्थिति तब रहेगी जब हम सदा बाबा के स्नेह में खो जाएंगे, और उसके लिए ये हमारी अशरीरी स्थिति चाहिए। जितना इस अशरीरी स्थिति में रहते हैं, हमारी सदा स्नेहमय स्थिति रहेगी, और उसको ये विनाश की बातें, कोई और बातें, कोई भी उसे ना डर होगा ना भय होगा, वो निश्चिंत सदा खुश रहती है। जितने हमारे हिसाब किताब भी चुप्त होंगे तभी ऐसी आत्मा सदा निश्चिंत बेफिक्र रहती है, हलचल में नहीं आएगी। इसलिए इस अवस्था को हमें बनाना है, इसलिए सदा निगेटिव को पॉजिटिव में लाओ, संकल्प को कम चलाओ, सदा जो योग करते उस योग को यथार्थ करना है। और जितना हम सवेरे का अमृत वाला योग अच्छा करते हैं, क्लास के पहले थोड़ा सा आकर के योग करते हैं, मुरली को ध्यान से अच्छी तरह सुन लेते हैं, उतनी हमारी अशरीरी स्थिति बनती है। और उसी अशरीरी स्थिति से हम सारा दिन लगन में सदा मगन स्थिति में रहेंगे। और जितना लगन में मगन रहेंगे उतना छोटी छोटी बातों को हम सहन करेंगे, ये गुण ऑटोमेटिकली हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ेंगे। सदा प्रसन्नता, निश्चिंतता, ये सब गुण और विशेषता दिखाई पड़ेंगी। वाइब्रेशन अच्छे फैलेंगे, बुद्धि के ऊपर कोई भी प्रकार का धूल नहीं आएगा। अशरीरी स्थिति में रहना अर्थात सदा तीसरा नेत्र खुला रखना। और जिसका तीसरा नेत्र खुला है, ये नेत्र की बातें अंदर नहीं जाएगी। भले हम देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भी देखते हुए भी न देखने की अवस्था, सुनते हुए भी न सुनने की अवस्था बनी रहेगी। कब? जब हमारी अशरीरी अवस्था है, तीसरा नेत्र हमारा सदा खुला हुआ है। इसलिए इस अशरीरी स्थिति के ऊपर हमें क्या करना है, मेहनत करनी है। और इसलिए अब सब बातों को बाबा ने कहा, बच्चे समेट लो, समाप्ति का वर्ष मनाना अर्थात कोई भी प्रकार की हलचल नहीं, सारी व्यर्थों से मुक्त। जितना मुक्त रहेंगे उतना हमारी ये अशरीरी स्थिति बनी रहेगी। अशरीरी स्थिति में से सदा हम बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, खोए हुए रहेंगे, और उससे ही हम बहुत अच्छा वाइब्रेशंस फैला सकेंगे। इसलिए इस अवस्था का हमें क्या करना है, अनुभव करना है। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी बातें, निगेटिव बातों को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। ना नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप डीप साइलेंस में रहता है, डीप साइलेंस में मूल वतन की स्थिति, जैसे हम मूल वतन से आए थे, धीरे धीरे हमारी वही स्थिति बनी रहे। हमारे अंदर जो सात ओरिजिनल गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जो सात ओरिजिनल गुण को जितना हम बढ़ाएंगे उतनी हमारी अशरीरी स्थिति बनी रहेगी। और उसी अशरीरी स्थिति के द्वारा हम सदा ही स्नेह में खो जाएंगे। इसलिए अब दूसरों को देखने का समय नहीं है। इसलिए अब 2017 की बातें 18 में नहीं लाना है। 18 अर्थात जैसे गीता के 18 अध्याय थे, 18 अध्याय के बाद क्या चालू हो जाता है, महाभारत। इसलिए ये वर्ष हमारे लिए बड़ा महत्व का है। इसलिए सब बातों को समेट करके हमें सदा अपनी ओरिजिनल स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। और इसी पुरुषार्थ से जैसे बाबा अपकारी पर उपकार करने वाले थे, जैसे बाबा निराकारी अवस्था में थे, जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के दोनों के गुण हमारे इस स्थिति से दिखाई पड़े, इसलिए ये अभी हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जितना यहां हम ब्रह्मा बाप के समान बनेंगे, शिव बाबा के समान बनेंगे, उतना राजधानी में श्री कृष्ण के समीप आएंगे। अगर बाबा के समान, बाबा क्यों कहते हैं मेरे समान बनो, शिव बाबा के समान और ब्रह्मा बाबा के समान बनने वाली आत्माओं के अंदर अच्छी क्वालिटी आएगी। और वो समान वही बन सकते हैं जो सदा अशरीरी स्थिति में नेचुरल रहते हैं। थोड़ा भी देह भान आया तो हमारे पुराने संस्कार जागृत होते हैं, हद की बातें दिखाई पड़ते हैं, दूसरे के अवगुण दिखाई पड़ते हैं, और गुण और शक्ति हमारे से दूर चली जाती है। ہم اسفل بن جائیں گے. اس لیے سدا بابا کے یاد میں کھوئے رہنے کے لیے سدا ہمیں کیا کرنا ہے, اس ستھتی کا انبھو کرنا ہے. اس لیے اس ورس میں ابھی ہمیں کیا کرنا ہے, یہ دھون لگانا ہے مجھے سدا چلتے پھرتے کرم کرتے بھی میری یہ اوستھا بنی رہے. اور جتنی یہ اوستھا بنی رہیں گے بھلے ہم کچھ اور سیوا نہیں کر رہے ہیں, لیکن وائبریشن پھیلانے کی سیوا, جیسے سورج جب نکل آتا ہے اسے وائبریشن پھیلنے سے کتنی سارے کیٹانو ختم ہو جاتے ہیں, اسے سیوا ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم اس اوستھا میں رہنے سے جو مایا کے کیٹانو پھیلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, دیوتاؤں کو آنے کے لیے دھرنی تیار ہو جائے گی. جس کو بابا کہتے ہیں منسا سیوا کرو. اور اس ستھتی میں رہنے سے جیسے سیتا کے سامنے راون آتا ہے, سیتا اپنی تلی کو جلا کر کے رکھ دیتی ہے ماچس, اسی طرح اس اشریری ستھتی میں رہنے سے ہماری بھی تلی سدا بروکوٹی میں جلی رہے گی. اور اس راون کے راجے میں رہتے ہوئے بھی راون کی باتوں سے مایا کی باتوں سے ہم سیف رہ سکیں گے, کیونکہ مایا تو ابھی کیا کر رہے بھن بھن سادھن بنا کر کے کچھ ایسی باتوں سے آپ کو دھیے بان میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بار دھیے بان میں آئے تو مایا اٹیک کرتی ہے. اور جتنا اس اشریری اوستھا میں رہیں گے ہمارے آتما کے اندر جو بھی وکاروں کے جرمس پھیلے ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہوتے جائیں گے اور ہم پاون بنتے جائیں گے. اسی لیے اس اوستھا میں سدا ہمیں کھوئے رہنا ہے, اس کا انبھو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اوم شانتی.